आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वज़ीरे आला के साथ मगरबी एशिया महाजाराई पर गुफ्तगू करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने केरलम में असेंबली इंतखाबात के लिए हतमी वोटर फहरिस्त शाये कर दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस्लाहात की फौरी जरूरत, क़याम अमन कार्रवाइयों को मरबूत बनाने और इंसानी हमदर्दी के सप्लाई निजाम को मुस्तहकम करने को उजागर किया है। आज नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लीडर बालेंद्र शाह को वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इक्तसादी इश्तराक और तरक्की से मुतालिक तंजीम OECD ने मौजूदा माली साल के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की 7.6% जबकि 2026-27 में 6.1% रहने का अंदाजा लगाया है। और फुटबॉल में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी एशिया महाजाराई के तनाजुर में चुनाव वाली रियासतों को छोड़कर आज सभी रियासतों के वज़ीरे आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। इसमें इन रियासतों की तैयारियों और मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। इस मीटिंग में टीम इंडिया के जज्बे के साथ कोशिशों में तालमेल कायम रखने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आज की इस मीटिंग में उन रियासतों के वज़ीरे आला शामिल नहीं होंगे जहां असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, क्योंकि वहां मिसाली जाब्ते अमल नाफिज है। काबीना सेक्रेटेरिएट चुनाव वाली रियासतों तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, आसाम और केरला नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी के चीफ सेक्रेटरियों के साथ अलग से मीटिंग करेगा। यह पहला मौका है कि जब वजीर आजम मगरबी एशिया महाजाराई पर वज़ीरे आला के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के साथ ये लड़ाई शुरू हुई थी। केरलम में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हतमी वोटर फहरिस्त कल रात शाये कर दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
हतमी वोटर फहरिस्त के मुताबिक केरलम में कुल वोटरों की तादाद 2,71,42,952 है। इस फहरिस्त में 19 साल तक की उम्र के 4,66,408 नए वोटर भी शामिल हैं। रियासत में 110 साल से ज्यादा उम्र के 54 वोटर हैं। हतमी वोटर लिस्ट के शाये होने, जिसमें SIR के बाद L वोटर शामिल हैं और नाम वापस लेने के अमल के मुकम्मल होने के बाद केरलम एक पुरजोश इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
पुदुचेरी में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त की तस्दीक होने के साथ ही चुनाव मुहिम और तैयारियों में तेजी आने लगी है। चुनाव महकमे के मुताबिक 71 उम्मीदवारों की तरफ से नाम वापस लिए जाने के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 30 हलकों में 294 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
पुदुचेरी में सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर चुनाव मुहिम में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी सदर और कोयम्बटूर साउथ की मेंबर असेंबली वनाथी श्रीनिवासन मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कल इंतखाबी मुहिम में शामिल हुई और अपोजिशन के INDIA ब्लॉक पर ये कहते हुए नुक्ताचीनी के इसमें इत्तेहाद और तालमेल का फुकदान है। उन्होंने वोटरों पर जोर दिया कि वो इस इत्तेहाद को मुस्तरद कर दें। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट वी वेथलिंगम ने थट्टन चावड़ी हलके के पुद्दुपेट इलाके में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इधर इंतजामी सतह पर चुनाव की तैयारियों में भी तेजी आ गई है। चुनाव कमीशन के नायब इंतखाबी कमिश्नर बानु प्रकाश यतुरू ने मुख्तलिफ चुनाव निगरानी निजाम के कामकाज का जायजा लेने के लिए पुदुचेरी में मरबूत कंट्रोल और कमान मरकज का दौरा किया। पुदुचेरी से बिपिन नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
वजीर खारजा एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस्लाहात की फौरी जरूरत, क़याम अमन कार्रवाइयों को मरबूत बनाने और इंसानी हमदर्दी के सप्लाई निजाम को मुस्तहकम करने को उजागर किया है। उन्होंने फ्रांस में G7 मुल्कों के वजीर खारजा की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। ڈاکٹر جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ انہوں نے عالمی حکمرانی کی اصلاحات کے تعلق سے بات کی. انہوں نے توانائی کے چیلنجوں, کیمیاوی کھاد کی سپلائی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے بارے میں عالمی خطہ جنوب کے ملکوں کی تشویش کے معاملے کو خاص طور سے اٹھایا. اقتصادی اشتراک اور ترقی سے متعلق تنظیم او ای سی ڈی نے موجودہ مالی سال کے دوران بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.6% جبکہ 2026-27 میں 6.1% رہنے کا اندازہ لگایا ہے. سال 2027-28 کے دوران اس شرح کے 6.4% رہنے کی بات کہی گئی ہے. بھارت بدستور دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی بڑی معیشت والے ملک کے زمرے میں ہے. مذکورہ تنظیم کے عبوری اقتصادی جائزے میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا کی مہازارائی سے عالمی معیشت کی مضبوطی آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے. آبنائے ہرمز سے گزرنے والی کھیپ کو روکے جانے اور توانائی کے کچھ بنیادی ڈھانچے کے بند ہونے اور نقصان پہنچنے کی وجہ سے توانائی کی قیمتوں میں اچھال آیا ہے. نیز توانائی اور کیمیاوی کھاد جیسی دیگر اہم اشیاء کی عالمی سپلائی میں خلل پڑ گیا ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. نیپال میں راشٹریہ سوتنتر پارٹی آر ایس پی کے لیڈر بالندر شاہ آج نیپال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیں گے. ان کی حلف برداری کی تقریب مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:34 پر کٹھمنڈو میں شیتل نواس میں صدر دفتر میں ہوگی. بالندر شاہ کو کل آر ایس پی پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا تھا, جس سے ان کے نیپال کے سب سے کم عمر وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی. ان کی پارٹی آر ایس پی نے 5 مارچ کو ہوئے پارلیمانی انتخابات میں تاریخی جیت حاصل کی تھی. ریپر سے سیاستداں بنے 35 سال کے بالندر شاہ ملک کے اعلی ترین عہدے پر فائز ہونے والے مدھیس خطے سے پہلے شخص بھی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران کے واسطے وقت کی حد 6 اپریل تک بڑھا دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے توانائی کے پلانٹس پر بمباری کو موقوف رکھیں گے. ادھر مزید ہزاروں امریکی فوجی خطے کے قریب پہنچ گئے ہیں. اس دوران اسرائیل نے ایران کی پشت پناہی والے حزب اللہ گروپ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مزید فوجیوں کو جنوبی لبنان میں اتارا ہے. اسرائیل میں ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلوں سے ہوشیار رہنے کے لیے سائرن بجائے گئے. خلیج کے ممالک میزائلوں کو بیچ میں ہی مار گرانے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں. ادھر ایران کی راجدھانی تہران اور دیگر شہروں میں شدید حملے کیے جانے کی اطلاع ملی ہے. ایران نے اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کل سعودی عرب پہنچے ہیں. ان کے اس دورے کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا. مغربی ایشیا میں جنگ کے تناظر میں یوکرین کی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کے تعلق سے خلیج کے ملکوں میں دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے. سعودی عرب اور یوکرین سیکورٹی اشتراک, خاص طور پر فضائی حدود کے تحفظ کے سلسلے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کرنے والے ہیں. اتر پردیش میں رام نومی کا تہوار آج مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس تقریب کا خاص پروگرام ایودھیا میں ہو رہا ہے, جہاں شری رام جنم بھومی مندر ہے. مندر میں سوریہ اشنان کا اہتمام کیا گیا ہے, جسے دوردرشن پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
رام نومی منانے کے لیے ہزاروں عقیدت مند ایودھیا میں جمع ہوئے ہیں. مختلف مندروں میں بھگوان رام کا درشن کرنے سے پہلے لوگ سریو دریا اور رام کی پیڑی میں اشنان کر رہے ہیں. بھگوان رام کے جنم کا جشن منانے کے لیے ایودھیا میں 5,000 سے زیادہ مندروں کو پوری شان سے سجایا گیا ہے. شری رام جنم بھومی مندر میں صبح کو بھگوان رام کے ابھیشیکم کے بعد دن میں ٹھیک 12 بجے گرب گرہ میں سوریہ تلک کی رسم انجام دی جائے گی. اس کے بعد 56 چڑھاوے پیش کیے جائیں گے. اس موقع پر مندر کے گرب گرہ میں ایک پھول بنگلہ سجایا گیا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے مندر درشن کے لیے رات دیر گئے تک کھلا رہے گا. اس کے علاوہ آج شام چترکوٹ میں بھی مندکنی دریا کے کنارے پر ایک اور بڑی تقریب ہوگی, جہاں رام نومی کے موقع پر تقریباً 22 لاکھ دیے روشن کیے جائیں گے. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
پیپلز پدما اور ऑन आकाशवाणी के तहत हमने ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा से बात की, जिन्हें अदब और तालीम के शोबे में उनके अहम रोल के सिले में पद्मश्री से सरफराज किया जाएगा।
मेरा बचपन आदिवासी बच्चों के साथ खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
उनके साथ ये गुफ्तगु आज सुबह 9:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब होगा। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय और सिक्किम में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात की एजेंसी ने कल तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी राजस्थान, मशरकी उत्तर प्रदेश, अंदरूनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ की 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की चैंपियनशिप में कल मालदीव के माले में नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में दिफाई चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि हरीफ टीम पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, क्योंकि वो अपने इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश से 2-0 से हार गई थी। अब कल सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, जो ग्रुप बी में उसकी वाहिद हरीफ टीम है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के दूसरे मरहले के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। प्लेऑफ्स के लिए मकामात से मुतालिक तफसीलात बाद में दी जाएंगी। दूसरे मरहले के तहत 13 अप्रैल से 24 मई तक 12 शहरों में 50 मैच खेले जाएंगे, जिनमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली शामिल हैं। दूसरे मरहले के इफ्तिताही मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। आईपीएल के पहले मरहले का कल से आगाज होगा, जिसके तहत बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। खेलो इंडिया कबायली गेम्स के दूसरे रोज कर्नाटक की तैराक मणिकांता एल ने 200 मीटर मेडले इन्फरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीतकर सोने के तमगों की अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मगरबी एशिया बहरान, वजीर आजम मोदी आज वज़राए आला से बातचीत करेंगे। अखबार इनकलाब ने ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची के बयान को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारतीय जहाजों को आबनाए हुरमुज से गुजरने की इजाजत। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारों ने आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में खौफनाक सड़क हादसा, 14 मुसाफिरों की मौत। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने हादसात को रोकने के लिए अफसरान को रेलवे पुल बनाने की हिदायत दी। ये खबर भी बेशतर अखबारात में है। अखबारात ने हुकूमत की तरफ से जारी किए गए इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क के पास 60 दिनों के लिए तेल और गैस के मुनासिब ज़खायर मौजूद।
और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वज़ीरे आला के साथ मगरबी एशिया महाज़ाराई पर गुफ्तगू करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने केरलम में असेंबली इंतखाबात के लिए हतमी वोटर फहरिस्त शाये कर दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अक्वाह मुत्तहदा सलामती कौंसिल की इस्लाहात की फौरी जरूरत, कयाम अमन कार्रवाइयों को मरबूत बनाने और इंसानी हमदर्दी के सप्लाई निजाम को मुस्तहकम करने को उजागर किया है। आज नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लीडर बालेंद्र शाह को वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। और फुटबॉल में 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔